नमस्कार भारत, आज है 15 सितंबर दिन शुक्रवार। श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। उत्तर कोरिया ने जापान की ओर फिर छोड़ी मिसाइल, एक दिन पहले ही दी थी धमकी।
It's fully expected. It's another ICBM missile launch, and it's going to take some analysis in the coming.
Amnesty International का दावा, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध हिंसा के सबूत। और सोशल मीडिया पर कुछ आक्रामक तो हुई है कांग्रेस, लेकिन क्या भाजपा को चुनौती दे पाएगी?
पहले उनका एक तरीका था, वो कहते थे कि नहीं, ये सोशल मीडिया पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया की क्या अहमियत होती है।
विशेष रिपोर्ट में आज मिलवाएंगे कहानी वाली नानी से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से जापान की ओर फिर एक मिसाइल छोड़ी है। दक्षिण कोरिया और जापान की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। ये परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब चार दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक यह मिसाइल करीब 770 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और इसने करीब 3,700 किलोमीटर का सफर तय किया। म्यांमार में रोहिंग्या संकट गहराने के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की सेना जनसंहार अभियान चला रही है। इस बीच अमेरिका ने हिंसा को तत्काल रोकने की अपील की है, जबकि ब्रिटेन ने आंग सान सूची से अपने नैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी म्यांमार से सैन्य अभियान को तत्काल रोकने की अपील की है।
If that was investigated and one discover that there was a plan...
अगर इसकी जांच की गई तो पता चला कि रोहिंग्या आबादी को पूरी तरह या आंशिक तौर पर साफ करने की योजना की मंशा से काम किया गया था, तो इसे जनसंहार माना जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अभी ऐसी कोई मंशा है। मेरे हिसाब से जमीनी हालात के पीछे लंबे समय से चला आ रहा भेदभाव बड़ा कारण है। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष सलाहकार एडमा डियंग के शब्द। इराक में हुए दो आत्मघाती बम हमलों में कम 60 लोगों की मौत हो गई है। हमलावर चोरी से सैन्य वाहनों में आए थे। देश के दक्षिणी हिस्से में बसे शहर नसीरिया में ये हमले हुए हैं। पुलिस कर्नल अली अब्दुल हुसैन ने बताया कि एक हमलावर ने विस्फोटक बेल्ट पहन रखा था। एक भीड़ भाड़ वाले रेस्तरा में उसने खुद को उड़ा लिया, जबकि कुछ दूसरे बंदूकधारियों ने वहां खाना खा रहे लोगों पर ग्रेनेड फेंककर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। दूसरा हमला एक चेक पॉइंट पर हुआ। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। एक प्रत्यक्षदर्शी फिरास अहमद ने बताया कि हमलावरों के निशाने पर ईरानी तीर्थयात्री थे। ईरानी तीर्थयात्रियों से भरी चार बसें वहां थीं। वो बसों में घुसे और गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जबकि पिकअप ट्रक में सवार अन्य हमलावर लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसके बाद वो एक रेस्तरां में गए और चारों ओर गोलीबारी करने लगे। वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। ये थे फिरास अहमद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी वैज्ञानिकों ने टीके की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे बचपन में लगने वाले हर टीके को एक ही खुराक में दिया जा सकता है। काफी कप के आकार के सूक्ष्म कणों वाले इस टीके को हफ्तों सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका प्रयोग इंसानों पर नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि विकासशील देशों को इससे खास फायदा होगा। अमेरिका ने ईरानी नागरिकों पर पहले से और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान की दो संस्थाओं और 7 व्यक्तियों पर ये प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन संस्थाओं और लोगों पर शक है कि या तो वे साइबर हमले में शामिल थे या ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इन्होंने मदद की। इनसे जुड़ी अमरीका में मौजूद हर संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुमान के मुताबिक पड़ोसी देशों की पाबंदियों का सामना करने के लिए कतर ने अपनी अर्थव्यवस्था में 38 अरब डॉलर डाले हैं। चरमपंथियों को आर्थिक मदद देने और ईरान से संबंध बनाए रखने के आरोप लगाते हुए सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर से सारे संबंध तोड़ लिए थे। एजेंसी के मुताबिक कतर के व्यापार, टूरिज्म और बैंकिंग क्षेत्र को इस प्रतिबंध से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ब्राजील के शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक ने राष्ट्रपति माकेल टेमर पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में बाधा पहुंचाने और गुटबाजी करने का मुकदमा दर्ज किया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर पहले उत्तर कोरिया ने अपनी राजधानी प्योंगयांग से एक बार फिर जापान की दिशा में एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान को डुबोने की धमकी दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ विकास त्रिवेदी।
दक्षिण कोरिया की सेना और जापान दोनों ने यह कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपनी राजधानी प्योंगयांग के पास से जापान की ओर एक मिसाइल छोड़ी है। दक्षिण कोरिया ने इसके तत्काल बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। जापान के मुताबिक ये मिसाइल उत्तर पूर्वी जापान की ओर छोड़ी गई है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिसाइल लॉन्च के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिदे सुगा ने बताया, मिसाइल सुबह करीब 6:57 पर छोड़ी गई और 7:06 पर यह होकाइडो द्वीप के ऊपर से होकर गुजरी। 7:16 पर यह समुद्र में गिरी। इस मिसाइल का कोई हिस्सा बरामद नहीं हुआ है। विमानों और जहाज़ों को किसी नुकसान की खबर नहीं है। ये थे जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिदे सुगा के शब्द। अमरीकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज से जुड़े लेफ्टिनेंट कर्नल डेनियल एल डेविस इस लॉन्च से बिल्कुल हैरान नहीं है। उन्होंने कहा, ये तो पूरी तरह संभावित था। एक और अंतर महाद्वीपीय मिसाइल लॉन्च हुआ है। यह कितना सफल रहा या इसकी मारक क्षमता कितनी है, इस बारे में तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर इससे हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल डेनियल एल डेविस के शब्द। बीते 3 सितंबर को ही उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने अभी 4 दिन पहले ही उत्तर कोरिया पर और पाबंदियां लगाई थी। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने अपने सबूत बड़े परमाणु हथियार हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी। अब बात म्यांमार के रोहिंग्या संकट की। म्यांमार की सेना पर रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के घर जलाने और हिंसा करने के आरोप हैं, जिससे म्यांमार सरकार इनकार करती रही है। लेकिन अब मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या गाँवों को योजनाबद्ध तरीके से आग लगाई। अमरीका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने भी रखाइन प्रांत की हिंसा को नाकाम काबिले बर्दाश्त बताया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए संदीप राय से।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि म्यांमार की सेना ने योजनाबद्ध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के घरों को आग लगाई है। संस्था ने कहा है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में म्यांमार के हिंसाग्रस्त रखाइन प्रांत में 80 से ज्यादा जगहों पर भयंकर आग लगने का पता चलता है। इसके मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने खुद बताया है कि म्यांमार की सेना और हमलावर गिरोहों ने घर जलाने के लिए पेट्रोल और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध गोलीबारी कर रोहिंग्या निवासियों की हत्याएं की। एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े ओलफ ब्लूमक्विस्ट कहते हैं, हमने अलग अलग स्रोतों से जो जानकारियां जुटाई हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों की ओर से जातीय सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। रखाइन प्रांत जल रहा है। हमने पूरे प्रांत में 80 से ज्यादा जगहों पर आग लगने के सबूत इकट्ठा किए हैं। इस बात से यही नतीजा निकलता है कि म्यांमार की सेना किसी भी तरह से रोहिंग्या लोगों को देश से बाहर करने के लिए अभियान चला रही है। सेना और हमलावर गिरोह मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये थे ओलफ ब्लूमक्विस्ट के शब्द। हालांकि सेना का कहना है कि उसने रोहिंग्या चरमपंथियों के हमले की जवाबी कार्रवाई में सैन्य अभियान चलाया है। नागरिकों को निशाना बनाए जाने से उसने इनकार किया है। म्यांमार से जान बचाकर हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी म्यांमार की सेना को हिंसा बंद करने की चेतावनी दी है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए। हम मानते हैं कि आंग सान सूची बेहद मुश्किल और जटिल हालात का सामना कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया के बाकी देश भी इस पर बोलें। ये हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसे नस्लीय नरसंहार का नाम दे रहे हैं। हमें सूची और उनके नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए, लेकिन सत्ता में साझेदारी करने वाली सेना को साफ तौर पर संदेश देना होगा कि यह हिंसा अस्वीकार्य है। ये थे रेक्स टिलरसन के शब्द। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि म्यांमार के शीर्ष नेता आंग सान सूची को अपने नैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा,
I yield to no one in my admiration of what she stood for and the way she fought for democracy. And I think many people around the world share that admiration.
लोकतंत्र के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जरूरी हो गया है कि उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए और रखाइन प्रांत में लोगों की तकलीफ पर बोलना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि बर्मा में सैन्य शासन लौटे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो साफ कहें कि ये नफरत है और लोगों को वापस आने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये थे बोरिस जॉनसन के शब्द। बौद्ध बहुल म्यांमार में कई सालों से रोहिंग्या और बौद्धों के बीच संघर्ष चल रहा है। दसियों हजार रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश भाग चुके हैं और अभी भी पलायन जारी है। ढाका की अपील पर भारत सरकार ने बांग्लादेश पहुंचे शरणार्थियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए राहत सामग्री भेजने का फैसला लिया है।
श्रोताओं, आप जानते हैं कि हमारी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल बांग्लादेश में मौजूद हैं और रोज वहां से रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का हाल हमें बता रही हैं। कल वह पहुंची बांग्लादेश के कॉक्सस बाजार शहर के पास कुटाबलोंग में बने एक शरणार्थी शिविरों में, और वहां उन्होंने क्या देखा, मानसी दास से उनकी इस बातचीत में सुनिए।
जी, आज हम कुटाबलोंग नाम की एक जगह है जो कि कॉक्सस बाजार से करीब एक घंटे की दूरी पर है। वहाँ एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप है जहाँ पर पहले से ही कई रोहिंग्या शरणार्थी जो पिछले कई सालों से आते रहे हैं वहाँ पर रहते रहे हैं, लेकिन करीब 20 से 30 हजार हमने सुना था वहाँ पर रहते थे। और पिछले कुछ हफ्तों में जो लोग आए हैं उससे वहाँ की संख्या 70 हजार से भी ज्यादा बताई जा रही है। कुछ एड एजेंसीज ने अपने कैंप्स लगाए हैं, लेकिन लोगों की संख्या रोज दर पे दर बढ़ती ही जा रही है। अब भी सैकड़ों में लोग आ रहे हैं। आज भी जब हम सड़कों पर निकले तो कुटाबलोंग क्षेत्र में हम देख सकते थे रोड के दोनों तरफ शरणार्थी खड़े हुए थे। कुछ लोग चले जा रहे थे कोई जगह ढूंढने के लिए जहां उनको एक छत मिल जाए। माएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके घूम रही हैं, जगह ढूंढ रही हैं। कुछ एजेंसीज हैं या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके एड ट्रक्स आते हैं, लेकिन जिस तरह से बंटवारा हो रहा है राहत सामग्री का वो बिल्कुल केओटिक है। ट्रक पे खड़े होके लोग खाना फेंकते हैं और कपड़े फेंकते हैं शरणार्थियों के ऊपर, और जिसका हाथ आगे बढ़ा उसको तो सामान मिल जाता है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है राहत सामग्री के वितरण में। हालांकि एड एजेंसी यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यहाँ पर है और उनसे हमारी लगभग रोज बात होती है। ऑन द रिकॉर्ड वो ये नहीं कहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि बांग्लादेशी सरकार जो है उन्होंने इस बात पे पाबंदी लगाई है कि वो लोग कहाँ पर काम कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ कुछ ही कैंप्स हैं जहाँ पर उनको आधिकारिक रूप से काम करने की इजाजत है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ एक टेंट बनाकर यहाँ वहाँ रह रहे हैं उन तक कोई भी कोऑर्डिनेटेड एड नहीं पहुँच रही है।
कोई अनुमान कि कितनी संख्या में महिलाएं होंगी कैंप में और कितनी संख्या में बच्चे होंगे?
जी, जब पहले दिन हमारी यूनिसेफ से बात हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की जो बच्चों की एजेंसी है, उन्होंने तो हमें ये कहा था कि 70-80% महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन जब मैं खुद कैंप्स का दौरा कर रही हूँ तो देखने में लगता है कि हो सके 60% के आसपास महिलाएं बच्चे दिखते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जितने देखने को मिले उतने मैंने आज तक किसी भी शरणार्थी कैंप में नहीं देखे हैं।
और किस तरह के घर या किस तरह के शेड्स बने हुए हैं वहाँ पर? क्या कोई टीने की छत है या ऐसे ही तारपोलिन से जो है छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना दी गई हैं?
जी, झोपड़ी भी नहीं है, वो लोग केवल बांस खरीदते हैं और जब इस तरफ आते हैं म्यांमार से काले रंग के बड़े बड़े या तो प्लास्टिक के बैग या फिर टारपोलिन खरीदते हैं और बस उसी को छत बनाकर रहते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो कि एक टारपोलिन और बांस के शेल्टर के नीचे 20-25 लोग भी रह रहे हैं। आज फिर हमारी कुछ शरणार्थियों से बात हुई जो कि अभी 2 या 3 दिन पहले ही इस तरफ आए हैं म्यांमार से, और उनका ये कहना था कि हजारों लोग अभी दूसरी तरफ फंसे हुए हैं जो कि इस तरफ आना चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा है वो तो बोट वालों को पैसा दे के इस तरफ आ जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो फंसे हुए हैं और वो यहाँ आना चाहते करते हैं क्योंकि उनके दिल में अभी भी म्यांमार सेना का बहुत भय है, उनको लगता है वो मार दिए जाएंगे।
बांग्लादेश से बीबीसी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। अखबारों के साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं संदीप राय। संदीप, खासम खास क्या है आज के अखबारों में?
जी कुलदीप जी, आज के लगभग सभी अखबारों ने भारत में पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। बड़ी दिलचस्प लोगों ने हेडिंगें डाली हैं, जैसे हिंदुस्तान ने एक हेडिंग डाली है कि बुलेट की रफ्तार के साथ रोजगार भी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि चीन को ध्यान में रखते हुए भारत और जापान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि लेह में एक अंतरधार्मिक विवाह के चलते सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने कारगिल से आने वाले लोगों को गुरुवार तक वापस चले जाने की चेतावनी दी है। वो चेतावनी का जो समय है वो कल खत्म हो गया। पिछले हफ्ते एक बौद्ध युवती के एक मुसलमान युवक से शादी की खबर के बाद सांप्रदायिक तनाव का माहौल है वहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार माल्या मामले में ब्रिटेन ने जांच शुरू कर दी है और ब्रिटेन का सीरियस फ्रॉड ऑफिस देश और विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करेगा। द स्टेट्समैन की एक खबर के अनुसार तमिलनाडु में AIADMK से निकाले गए पूर्व नेता दिनाकरन ने शशिकला को पार्टी प्रमुख पद से हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है। पार्टी के पनीरसेल्वम और पलानी स्वामी गुट ने मंगलवार को पार्टी के भूतपूर्व प्रमुख जे जयललिता को परमानेंट जनरल सेक्रेटरी घोषित कर दिया था। इसको लेकर के दोनों गुटों में काफ़ी संघर्ष है। हिंदी अखबार अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर की जेल में बंद आसाराम बापू ने पत्रकारों से के सवालों से इतना खींच गए थे कि उन्होंने कहा कि न तो मैं संत हूँ, न कथावाचक, मैं तो गधा हूँ। द हिंदू की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के कथित मास्टरमाइंड अबू इस्माइल की गुरुवार को हुई एक मुठभेड़ में मौत हो गई है। इस्माइल लश्कर ए तैयबा के कमांडर थे। अमर उजाला की एक अन्य खबर के अनुसार दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
बहुत शुक्रिया संदीप राय अखबारों की समीक्षा के लिए। अब बात भारत की सियासत की। भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी में उनकी सोशल मीडिया की रणनीति की खासी चर्चा होती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का 2014 का चुनावी अभियान हो या फिर उसके बाद के ज़्यादातर विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत। सोशल मीडिया पर दूसरी पार्टियों के मुकाबले भाजपा आगे और आक्रामक रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में खासतौर से गुजरात में भाजपा को सोशल मीडिया पर चुनौतियां मिल रही हैं। तभी अमित शाह भी नौजवानों से इंटरनेट के भाजपा विरोधी अभियान से बचने की अपील करते हैं। कांग्रेस ने इस बीच रणनीतिक तरीके से सोशल मीडिया पर उभरने की कोशिश की है। कांग्रेस अब तक जो इस अंतरजाल युद्ध में पिछड़ रही थी, अब डिजिटल तो हो रही है, लेकिन क्या सफल भी होगी? प्रदीप कुमार की ये रिपोर्ट सुनिए आदर्श राठौर से।
जिस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन की योजना का शिलान्यास कर रहे थे, उससे पहले गुजराती सोशल मीडिया में विकास पगला गया है टॉप ट्रेंड कर रहा था। कुछ विश्लेषक इसे आम लोगों का राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा मान रहे हैं, तो कुछ विश्लेषकों की राय में कांग्रेस सोशल मीडिया पर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से कवर कर रहे राजनीतिक पत्रकार रशीद किदवई मानते हैं,
कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि जो पहले उनका एक तरीका था, वो कहते थे कि नहीं ये सोशल मीडिया पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। एक कर्नाटक की पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिल्म अदाकारा भी है, दिव्या उनको रामिया के नाम से भी जाना जाता है, उनको सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया है और एक पूरी प्रोफेशनल टीम जो है जो 24 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिस्टम में काम कर रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो बढ़त हासिल कर चुकी है, उसे क्या कांग्रेस भर पाएगी? वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और समाचार एजेंसी भाषा के संपादक निर्मल पाठक के मुताबिक कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है।
देखिए, कांग्रेस इसमें काफी देर में सोशल मीडिया में एंटर हुई है, क्योंकि 2014 का इलेक्शन जिस तरह से लड़ा गया उसमें भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी आधी लड़ाई तो उन्होंने काफी एग्रेसिव कैंपेन चलाया अपना। कांग्रेस को ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि वो लोग पिट रहे हैं। अब धीरे धीरे कांग्रेस उसको उस गैप को भरने की कोशिश कर रही है। उसको पकड़ने के लिए उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
सोशल प्लेटफॉर्म चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे है। ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी को 65 लाख लोग फॉलो करते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ 25 लाख। वहीं फेसबुक पर बीजेपी को लाइक करने वालों की संख्या 1,35,00,000 है जबकि कांग्रेस को सिर्फ 45 लाख लोग लाइक करते हैं। ऑल्ट न्यूज के संपादक प्रतीक सिन्हा के मुताबिक एक और ऐसी वजह है जिसके चलते सोशल मीडिया पर बीजेपी का पलड़ा भारी है।
अर्बन एरियाज में बीजेपी काफी फॉलोइंग होती है, उसके चलते बीजेपी का जो सपोर्टर्स का प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे वो भी काफी ज्यादा है। मगर ये बात भी सच है कि लोगों में आक्रोश भी है तो वो भी सोशल मीडिया पर रिफ्लेक्ट होता है। जॉब्स के इशू है, प्राइस राइज का इशू है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है।
जाहिर है कि कांग्रेस के सामने 2019 की चुनौती आसान नहीं रहने वाली, चाहे वो चुनावी मैदान की बात हो या फिर सोशल मीडिया की।
कांग्रेस को अपनी ये जो छोटी कामयाबियां मिल रही है या छोटी सी खिड़की खुल रही है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्या वो उसका लाभ उठा पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। और खुद राहुल गांधी अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं जनता के बीच में, 2012-13-14 में उनका बहुत ज्यादा ग्राफ गिरा था और खासतौर से युवाओं में कुछ जगह तो यहाँ तक हो गया कि एक हास्य का पात्र भी बनाने की कोशिश की गई। तो अब राहुल जो है थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को एक गंभीर राजनेता के रूप में पेश कर रहे हैं।
राहुल गांधी के सामने 2019 में आम लोगों का भरोसा हासिल करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का भरोसा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
अभी तक लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, क्या विपक्ष में इस तरह की क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उनके पैरेलल एक कैंपेन चला के कि नहीं नरेंद्र मोदी जी गलत बोल रहे हैं, लोग उस पर भरोसा कर लें। उस तरह की क्षमता जब तक विपक्ष के पास नहीं होगी तब तक मुझे लगता नहीं है कि ये सोशल मीडिया के कैंपेन से ही वो इस चुनाव को जीत सकते हैं।
2019 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। देखना होगा कि कांग्रेस इस चुनाव तक कितना तैयार हो पाती है।
प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश के संविधान में बदलाव करके उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित हैं और इसे बदले जाने की ज़रूरत है। हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से और पूछा कि आम्बेडकर के लिखे संविधान में क्या बदलाव की जरूरत है और बहुमत आपको कितना और क्या बदलने का अधिकार देता है।
देखिए, संविधान तो बीच बीच में बदला जाता है, कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं संविधान में, लेकिन सवाल यह है कि आरएसएस किस तरह के बदलाव की बात कर रहा है। आरएसएस कह रहा है कि हिंदुस्तान में सेकुलर संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। वो तो कतई परमिटेड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में कह चुका है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है। इसके मतलब उसका बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे उनके पास 2/3 मेजोरिटी हो भी। 2/3 मेजोरिटी से भी संविधान को इस तरह से नहीं बदला जा सकता कि उसके मूल आधार ही खत्म हो जाए।
आरएसएस का कहना है कि भारतीय मूल्य के अनुसार बदला जाना चाहिए। तो ये भारतीय मूल्य आखिर हैं क्या और इनको डिफाइन कौन करेगा अगर हम नए संविधान की बात करते हैं तो?
हर एक आदमी की अपनी अलग अलग परिभाषा होती है भारतीय मूल्य की। अब आरएसएस की परिभाषा भारतीय मूल्य की ये है कि गाय के नाम पर लोगों को पीटो, गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर लोगों को दो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों की लड़ाई करवाओ। उन्होंने पहले भी बोला था कि भाई हिंदुस्तान को आज़ाद करना कोई भारतीय मूल्य नहीं है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करना ये उनके हिसाब से भारतीय मूल्य है। लेकिन अधिकतर हिंदुस्तान और संविधान बनाने वाले लोग आरएसएस की परिभाषा से नहीं इत्तेफाक रखते, वो नहीं मानते कि भाई ये भारत के मूल्य हैं। आज तो यही प्रॉब्लम हो गई है ना कि ये सरकार आरएसएस के ही दम पर और आरएसएस के कहने पर चल रही है, और इसके चलते हुए आज हम ये देख रहे हैं कि इतिहास की पुस्तकों में बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें लिखी जा रही हैं जो कोई भी इतिहास समझने वाला जना कह सकता है कि भाई ये झूठी बातें हैं। मेरी तो खैर ये राय है कि आरएसएस का कोई जना कोई संवैधानिक पद को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ओथ लेनी होती है, उसको कहना होता है कि भाई हम संविधान की रक्षा करेंगे।
संविधान को आखिर बदला कैसे जा सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है?
पार्लियामेंट में दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करना होता है कोई भी संविधान के संशोधन का। लेकिन आप संशोधन उस चीज का नहीं कर सकते जो संविधान के मूल आधार हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी यानी कि बराबरी। मूल आधार नहीं बदल सकते, मेन तो वो यही बदलना चाहते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान में कह दें कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी हमारे संविधान में, ये कहना चाहते हैं। वो नहीं कह सकते चाहे जितनी भी, चाहे उनकी 100% मेजोरिटी भी हो।
ये थे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। अब आज की विशेष रिपोर्ट। अगर कोई महिला ये दावा करे कि वो 1000 बच्चों की नानी है तो श्रोताओं आपको हैरत जरूर होगी, लेकिन 62 साल की सरला मिन्नी का ये दावा तकनीकी तौर पर सही है, क्योंकि वो ऐसी नानी है जिनका कई बच्चों से कहानियों का रिश्ता है। वो बन गई हैं सबकी चहेती कहानी वाली नानी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शेर और चूहे की कहानी सुनाती हूँ। शेर तो बहुत बड़ा जानवर होता है और चूहा छोटा सा, लेकिन दोनों में दुपक्की दोस्ती हो गई। कैसे? दोनों फ्रेंड्स हो गए। सुनो।
इस तरह के 50 से भी ज्यादा कहानियां सरला मिनी यानी कहानी वाली नानी ने बच्चों को सुनाई है, और ये बच्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में रहते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वो कहानी वाली नानी मार्च 21, 2017 से ही बन गई थी, जब से वो कहानियां रिकॉर्ड करने के बाद ऐप के जरिए बच्चों को भेजना शुरू कर दी। तो ये कहानी वाली नानी का सफर कैसे शुरू हुआ? सरला मिनी ने कहा,
एक दिन मेरी भांजी है सूरत में, उसने कहा कि मासी आप तो बहुत अच्छी कहानियां बोलते हो, ऐसे करते हैं कि आप रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में और मैं भेजती हूँ, उनको कैसा अपने को रिस्पांस मिलता है हम लोगों को, फिर हम आगे देखते हैं। और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि पेरेंट्स ऐसे लिखते थे कि अरे हमारे बच्चे ने तो 3-3 बार एक कहानी सुनी है, और बस हम लोगों ने कहानी वाली नानी लॉन्च कर दी।
सरला मिनी बहुत सारी कहानियां उनके बचपन की ही बताती हैं। वो कहानियां और उनके कई संस्करणों को रिकॉर्ड करने से पहले पढ़ती हैं। उनका मानना है कि जब बच्चों को कोई काम नहीं करने से बोला जाता है तो वो सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर कहानी के माध्यम से वही बात कही जाती है तो उसका असर ही अलग होता है। एक उदाहरण के तौर पर सरला मिनी ने बताया,
जैसे मेरी एक कहानी है बिट्टू, तो उसमें वो लड़का हमेशा काम टालता रहता है, कोई भी उसे बोलेगा एक ग्लास पानी दो या पहले अपना होमवर्क करके फिर खेलो, हाँ मम्मी एक मिनट रुको, बस एक मिनट मैं अभी कर देता हूँ, बस थोड़ा सा खेल लेता हूँ, और वो खेलता ही रहता और अपना काम नहीं करता है। और फिर जब कुछ ऐसी बातें हो जाती कि उसको समझ में आता है कि एक मिनट वाली चीज ठीक नहीं है, तो वो अच्छा लड़का बन जाता है। तो जब मैंने ये कहानी भेजी थी तो मुझे बहुत सारे वापस फीडबैक्स मिले कि हाँ नानी अब हम एक मिनट वाले नहीं रहेंगे, मेरा नाम भी बिट्टू है पर मैं ऐसा नहीं बनूंगा।
दिलचस्प बात यह है कि सरला मिनी की कहानियां ना सिर्फ बच्चों को बल्कि दूसरे नानियां या दादियां को भी प्रभावित करती हैं। सरला मिनी कहती हैं,
इस पर हम लोगों ने विचार किया, मैंने और पारुल ने, कि हम लोग एक ऑडिशन रखते हैं, और कुछ स्टोरीज ऐसी थी आई कि उन्होंने बोले कि आप भी भेजिए, ओनली ग्रैंड पेरेंट्स, इट शुड बी अ एल्डरली वॉइस, कोई यंग वॉइस नहीं चाहिए। तो उसी में कहानियां अगर कोई नरेट करके भी भेजता है तो हम उसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, गिविंग ड्यू क्रेडिट टू देम, और अगर वो नरेट नहीं कर सकते उनकी अपनी कहानियां हैं तो उनको क्रेडिट देते हुए मैं नरेट करके इतने सारे बच्चों तक पहुंचाऊंगी, तो ये खुशी उनको मिलेगी जो मुझे मिली है। मैं चाहती हूँ कि सारे ग्रैंड पेरेंट्स को मिले।
कहानियां तो हर किसी की नानियां और दादियां सुनाती हैं। सरला मिनी और दूसरों में फर्क शायद एक वजह से भी हो सकता है कि वो मानती हैं कि कहानियां सुनना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले संदीप राय से मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से जापान की ओर फिर एक मिसाइल छोड़ी है। दक्षिण कोरिया और जापान की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। म्यांमार में रोहिंग्या संकट गहराने के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की सेना जनसंहार अभियान चला रही है। इराक में हुए दो आत्मघाती बम हमलों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी वैज्ञानिकों ने टीके की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे बचपन में लगने वाले हर टीके को एक ही खुराक में दिया जा सकता है। अमरीका ने ईरानी नागरिकों पर हमले से और कड़े नागरिकों पर पहले से और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। बीबीसी हिंदी का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।